अक्सर जब हम कोई बहुत ही बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर फिल्म देख रहे होते हैं ना, तो उसके नैरेटिव में एक बहुत ही जाना पहचाना सा पैटर्न होता है.
हाँ बिल्कुल, एक बिल्डअप होता है.
हाँ, मतलब कहानी बिल्कुल अपने चरम पर यानी क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी होती है. मुख्य किरदार ने विलेन को या किसी बहुत बड़ी सत्ता को एक अंतिम और खुली चुनौती दे दी है.
और स्क्रीन पर सब कुछ एकदम ठहर सा जाता है.
सही कहा, माहौल में एक भारी तनाव होता है और हर कोई अपनी सांसें थामे हुए हैं कि अब क्या होगा, आसमान से क्या जवाब मिलेगा. लेकिन ठीक उसी पर,
उसी पल कहानी कट जाती है.
बिल्कुल,
मतलब जब उस परम सत्य के सामने आने का वक्त होता है, अचानक से स्क्रीन पर 20 मिनट का एक लंबा कमर्शियल ब्रेक आ जाए,
हाँ,
या फिर कोई ऐसा साइड कैरेक्टर अचानक स्क्रीन पर आकर एक बेहद लंबा मोनोलॉग शुरू करते,
जिसका मुख्य कहानी से कोई लेना देना ही ना लग रहा हो.
हाँ एकदम.
ये एक ऐसा पल होता है जो मतलब किसी भी देखने वाले को बुरी तरह बेचैन कर सकता है.
ओह, ये एक बहुत ही तीखी नैरेटिव तकनीक है. मतलब अगर इसे सही से ना संभाला जाए तो कहानी पूरी तरह से पटरी से उतर सकती है.
झुंझुलाहट होती है ना,
बहुत ज्यादा.
पढ़ने वाले या देखने वाले को एक अजीब सी चिढ़ होती है कि ओह, आखिर ये किरदार बीच में कहां से टपक पड़ा. जिस मुख्य टकराव का इंतजार था उससे ध्यान पूरी तरह भटक जाता है और एक वैचारिक शून्य सा पैदा हो जाता है.
और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का जो केंद्र बिंदु है वो ठीक यही वैचारिक शून्य और ये अचानक होने वाली रुकावट है.
बिल्कुल, आज हम प्राचीन साहित्य की एक बहुत ही प्रसिद्ध और जटिल दार्शनिक रचना बुक ऑफ जॉब के एक बेहद रहस्यमयी हिस्से के पन्नों को पलट रहे हैं,
जो कि बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है.
हाँ, और हमारा मुख्य स्रोत डॉक्टर जॉन वॉल्टन के सेशन 20 के व्याख्यान के नोट्स हैं, जो विशेष रूप से अध्याय 32 से 37 के बीच की घटनाओं पर केंद्रित हैं.
ये वो हिस्सा है जहाँ काफी उथल पुथल होती है.
एकदम, इस पूरे ग्रंथ में ये वो हिस्सा है जहाँ जोब ने अभी अभी अपनी बेगुनाही की अंतिम कसम खाई है. उसने अध्याय 31 में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी अदालत में अपना केस रख दिया है और ईश्वर को सीधे चुनौती दे डाली है.
और हवा में एक ऐसा सस्पेंस है जिसे
काटा जा सकता है. मतलब क्या ईश्वर उस धूल और राख में बैठे इंसान को जवाब देंगे? और तभी बिना किसी पूर्व चेतावनी के एलिहू नाम के एक युवा किरदार की एंट्री होती है
जो अगले 6 अध्यायों तक लगातार बोलता रहता है, रुकता ही नहीं है.
सच में, तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक ऐसा किरदार जिसे इतिहास में अक्सर महज एक दखलअंदाजी करने वाला या इंटरलोपर माना गया है, वो असल में इस पूरी प्राचीन पुस्तक के दार्शनिक ढांचे को जड़ से हिलाकर रख देता है.
इस विषय की गहराई में उतरने से पहले हमें उस माहौल को समझना होगा जिसमें एलिहू बोलना शुरू करता है. मतलब जब भी कोई पाठक इस रचना को पढ़ता है तो एलिहू की उपस्थिति सच में किसी
अनुवाद की गलती जैसी लगती है ना.
हाँ, या फिर बाद में जोड़ी गई बेवजह की रुकावट जैसी. वो खुद को एक ऐसे युवा के रूप में पेश करता है जो अब तक अपने से बड़े, अनुभवी और ज्यादा उम्र के बुद्धिमान लोगों के सम्मान में चुप बैठा था.
वो कहता है कि वो बस सुन रहा था.
बिल्कुल, वो कहता है कि वो बस चीजों को देख रहा था, तर्कों को सुन रहा था. लेकिन अब वो दावा करता है कि उसके अंदर शब्द इतने ज्यादा भर गए हैं जैसे किसी नई शराब की बोतल में दबाव बढ़ गया हो.
अरे वाह, क्या उपमा है.
कि वो खुद को फटने से रोक ही नहीं पा रहा है. उसका बोलना किसी शांत नदी के प्रवाह जैसा नहीं है बल्कि
एक तरह का बौद्धिक विस्फोट है.
एकदम सही शब्द है, एक बौद्धिक विस्फोट.
लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है मुझे. मतलब एक तरफ जोब है जो अपनी पीड़ा के चरम पर है. उसने अपना परिवार, अपनी संपत्ति, अपना स्वास्थ्य सब कुछ खो दिया है.
हाँ, सब कुछ छिन गया है उसका.
और उसने खुलेआम ब्रह्मांड की सत्ता से कहा है कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे मेरे दुख का कारण बताया जाए. और दूसरी तरफ ये नया युवा किरदार है जो अचानक से बिना मांगे अपना ज्ञान बांटने लगता है,
बिना किसी के पूछे.
तो डॉक्टर वॉल्टन के नोट्स इस नैरेटिव रणनीति के बारे में क्या कहते हैं? क्या ये कहानी के प्रवाह को खराब करने वाली कोई साहित्यिक चूक है?
डॉक्टर वॉल्टन का विश्लेषण इस बिंदु पर बहुत ही स्पष्ट है. उनके अनुसार ये कोई साहित्यिक भूल नहीं है.
अच्छा,
नहीं, बल्कि ये संकलनकर्ता की एक बहुत ही सोची समझी और परिष्कृत रणनीति है. ये सस्पेंस जानबूझकर पैदा किया गया
ताकि पढ़ने वाले को भी वो बेचैनी महसूस हो.
बिल्कुल,
प्राचीन साहित्य में कई बार क्लाइमैक्स को विलंबित करने का तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था ताकि मुख्य चक्राव का प्रभाव और भी गहरा हो सके। मतलब कहानीकार चाहता है कि सुनने वाले थोड़ी देर के लिए इस असहज बेचैनी में रहें।
हाँ, वे इस कश्मकश में रहें कि क्या ईश्वर सच में जॉब की इस चुनौती का जवाब देंगे या क्या ब्रह्मांड हमेशा के लिए मौन ही रहने वाला है।
ये नैरेटिव सस्पेंस उस शून्य को भरता है जहाँ मानवीय तर्क थक चुके होते हैं,
लेकिन ईश्वरीय जवाब अभी आना बाकी होता है।
ये तो सच में किसी मास्टर नैरेटिव डिजाइन की तरह है। मतलब जब हम सस्पेंस की टूटने की उम्मीद कर रहे होते हैं तब सस्पेंस टूटता नहीं है बल्कि उसे रबर बैंड की तरह खींचा जाता है।
हाँ, और ये इंतजार ही असल तनाव पैदा कर रहा है।
लेकिन एलिहू केवल इस तनाव को खींचने के लिए तो मंच पर नहीं आया होगा, उसके तर्कों का अपना एक स्वतंत्र महत्व होना चाहिए, राइट?
बहुत बड़ा महत्व है।
क्योंकि अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो एलिहू से पहले जॉब के तीन दोस्त एलिपज, बिल्दाद और सोफा लगातार कई अध्यायों तक जॉब से बहस कर चुके थे। वे भी तो उसे कुछ समझाने की ही कोशिश कर रहे थे।
बिल्कुल कर रहे थे।
तो एलिहू का वैचारिक ढांचा उन तीनों से कैसे अलग है?
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि यहीं से बुक ऑफ जॉब का दार्शनिक आधार बदलता है। पहले के जो तीन दोस्त थे ना, उनका पूरा तर्क केवल एक ही धुरी पर घूम रहा था, पीछे मुड़कर देखना,
अतीत की ओर।
हाँ, वे केवल अतीत का अंदाजा लगा रहे थे। उनका मानना था कि अगर तुम आज इतने भयानक दुख में हो तो ये गणितीय सत्य है कि तुमने अतीत में कोई ना कोई ऐसा बड़ा और भयानक पाप जरूर किया होगा
जिससे तुम छिपा रहे हो, यही कहते थे ना।
बिल्कुल, वे बस अंधेरे में तीर चला रहे थे और जॉब से लगातार उस अज्ञात पाप को स्वीकार करने की मांग कर रहे थे। लेकिन एलिहू इस पुरानी कैसेट को नहीं बजाता।
अच्छा, वो कोई अंदाजा नहीं लगाता?
नहीं, वह जॉब के अतीत में कोई छिपा हुआ पाप नहीं ढूंढता, बल्कि वह जॉब पर एक बहुत ही सटीक, विशिष्ट और वर्तमान स्थिति से जुड़ा हुआ आरोप लगाता है।
ओ, यहाँ से चर्चा सच में एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि जॉब ने तो अभी अभी पूरी दृढ़ता के साथ अपनी बेगुनाही की कस्में खाई हैं।
हाँ, उसने लंबा चौड़ा शपथ पत्र दे दिया है।
उसने हर संभव नैतिक और सामाजिक नियम का पालन करने का दावा किया है, तो फिर एलिहू किस आधार पर उसे घेर रहा है? अगर वो किसी छिपे हुए अपराध की बात नहीं कर रहा तो उसका असली आरोप है क्या?
देखो, एलिहू का आरोप किसी पुराने नैतिक पतन का नहीं है, बल्कि वो जॉब की वर्तमान मानसिक स्थिति को कटघरे में खड़ा करता है। उसका सीधा आरोप स्वयं को ही पूरी तरह से धर्मी मान लेने के अहंकार का है,
जिसे हम आत्म अभिमान या सेल्फ राइचियसनेस कहते हैं।
बिल्कुल वही। एलिहू का तर्क है कि जॉब अपने बचाव में खुद को निर्दोष साबित करने की जिद में इतना अंधा हो गया है कि वो अनजाने में ही सही लेकिन ईश्वर को गलत और अन्यायी ठहराने लगा है।
बाप रे, ये तो बहुत बड़ा आरोप है।
है ना? डॉक्टर वॉल्टन इस बात पे जोर देते हैं कि इसे समझने के लिए हमें एलिहू के नाम के अर्थ पर ध्यान देना चाहिए।
उसके नाम का भी कोई खास अर्थ है?
हाँ, एलिहू का मतलब है वह मेरा ईश्वर है। यह बाकी तीनों दोस्तों के नामों के विपरीत एक बहुत ही प्रामाणिक इब्रानी नाम है। ये नाम ही उसे थियोडिसी के रक्षक के रूप में स्थापित करता है।
थियोडिसी यानी दार्शनिक रूप से ये समझाना कि अगर ब्रह्मांड को चलाने वाला ईश्वर पूरी तरह से अच्छा, सर्वशक्तिमान और न्यायपूर्ण है, तो फिर इस दुनिया में बेगुनाह लोगों के जीवन में इतना भयानक दुख क्यों है?
सटीक परिभाषा।
तो एलिहू एक तरह से उस ईश्वरीय न्याय प्रणाली का वकील बनके खड़ा हो गया। उसने पूरी बहस का केंद्र ही बदल दिया। मतलब अब बात जॉब के अतीत के पापों की नहीं बल्कि ईश्वर के चरित्र के बचाव की हो रही है।
सत्य वचन। और इस वैचारिक बदलाव को पूरी तरह से समझने के लिए हमें कहानी के बिल्कुल शुरुआती अध्यायों की ओर लौटना होगा,
जहाँ स्वर्ग का दरबार वाला सीन है।
हाँ, स्वर्ग के उस दरबार में जहाँ से ये पूरी परीक्षा शुरू हुई थी, वहाँ एक चुनौती देने वाला किरदार था,
जिसे हा शैतान भी कहा गया है।
बिल्कुल, उस चुनौती देने वाले ने जॉब के कार्यों पर नहीं बल्कि उसके इरादों पर सवाल उठाया था। उसका तर्क था कि जॉब केवल इसलिए अच्छा इंसान है क्योंकि ईश्वर ने उसके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना रखा है।
मतलब वो इंसान केवल अपने फायदों के लिए धार्मिक है।
हाँ, लेकिन डॉक्टर वॉल्टन रेखांकित करते हैं कि एलिहू का तर्क इस चुनौती देने वाले से भी एक कदम आगे या शायद एक कदम ज्यादा गहरा जाता है।
कैसे?
एलिहू पूरी कहानी में इकलौता ऐसा किरदार है जो जॉब की धार्मिकता पर ही सीधा दार्शनिक सवाल खड़ा कर देता है। वो जॉब के इरादों से ज्यादा उसके इस आत्म अभिमान को निशाना बनाता है जो दुख के समय उभर कर सामने आ गया है।
इस बात को थोड़ा और खोलते हैं क्योंकि ये विचार मुझे बहुत ही जटिल लग रहा है। एक मिनट के लिए मान लीजिए कि एलिहू ये स्वीकार कर लेता है कि जॉब ने अतीत में सच में कोई ऐसा बड़ा पाप नहीं किया।
मान लिया।
शारीरिक और मानसिक पीड़ा को कैसे न्याय संगत ठहरा रहा है? मतलब अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को बिना किसी पूर्व अपराध के ऐसी सजा दी जा रही है तो क्या ये सीधा सीधा ईश्वर के न्याय पर सवाल नहीं उठाता?
इंसानी नजरिए से देखा जाए तो हाँ।
तो एलिहू इस वैचारिक खाई को कैसे पाटने की कोशिश करता है?
यहीं पर एलिहू अपनी पूरी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करता है। वो तत्कालीन समाज के सबसे बड़े दार्शनिक नियम कर्मफल और दंड के सिद्धांत को एक बिल्कुल नया आकार देता है।
अच्छा, कैसे?
प्राचीन काल में यह सर्वमान्य सिद्धांत था कि ईश्वरीय न्याय केवल सुधारात्मक यानी रिमीडियल होता है।
जिसका मतलब ये था कि कोई व्यक्ति अतीत में कोई बुरा काम करता है तो उसे उसकी सजा मिलती है ताकि वो सुधर सके।
एकदम सही। ये पूरी तरह से पीछे की ओर देखने वाला दृष्टिकोण था।
तो अगर हम इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझें
जी,
तो क्या ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई सिविल इंजीनियर किसी नवनिर्मित पुल को आम जनता के लिए खोलने से पहले उस पर उसकी क्षमता से दुगना वजन डालता है?
अरे वाह, बहुत ही उम्दा धारणा है।
है ना? मतलब वो इंजीनियर पुल को इसलिए नहीं तोड़ना चाहता क्योंकि पुल ने कोई गलती की है
या पुल में पहले से कोई दरार नजर आ रही है।
हाँ, बल्कि वो उसे एक चरम तनाव, एक स्ट्रेस टेस्ट से गुजार रहा है ताकि अगर उसके भीतरी ढांचे में कोई छिपा हुआ दोष हो जो सामान्य परिस्थितियों में कभी सामने ना आती, वो पहले ही उजागर हो जाए
ताकि भविष्य में होने वाली किसी बड़ी दुर्घटना को रोका जा सके।
बिल्कुल।
एलिहू बिल्कुल यही ढांचा प्रस्तुत कर रहा है। वो कहता है कि ईश्वर का न्याय केवल अतीत के अपराधों पर प्रतिक्रिया देने वाला यानी सुधारात्मक नहीं होता, बल्कि ये भविष्य की ओर देखने वाला यानी निवारक प्रिवेंटिव भी हो सकता है।
प्रिवेंटिटिव जस्टिस।
हाँ, एलिहू का मानना है कि इंसान का हृदय बहुत गहरा है। जॉब के अंदर एक बहुत गहरा आत्म अभिमान और अपनी धार्मिकता का अहंकार छिपा हुआ था जो शायद खुद जॉब को भी दिखाई नहीं दे रहा था जब तक उसके पास सब कुछ था,
और ये दुख उस अहंकार को सतह पर लाने का एक साधन बन गया।
बिल्कुल। एलिहू इस अकल्पनीय दुख को असल में एक प्रकार के चारे या बेट के रूप में देखता है।
चारे के रूप में?
हाँ, इस चारे का एकमात्र उद्देश्य उस गहरे छिपे हुए अहंकार को बाहर निकालना था। एलिहू के तार्किक ढांचे के अनुसार जब तक जॉब को इस भयानक पीड़ा की आग से नहीं गुजारा जाता तब तक उसका वो अहंकार कभी सतह पर नहीं आता।
मतलब वो हमेशा एक ऐसे इंसान के रूप में रहता जो अपनी अच्छाई पर गर्व करता है लेकिन ईश्वर की संप्रभुता को पूरी तरह नहीं समझता।
सही कहा। इसलिए एलिहू के नजरिए में समस्या को उजागर करने के लिए ही इस दुख की, इस स्ट्रेस टेस्ट की आवश्यकता थी।
इंसान के अंदर की उस छिपी हुई वैचारिक बुराई को बाहर लाया जा सके जिसका उसने अभी तक कोई प्रदर्शन भी नहीं किया था।
सुनने में कठोर लगता है। हाँ,
तो इन सारी जटिलताओं को देखते हुए डॉक्टर वॉल्टन का अंतिम निष्कर्ष क्या है? क्या हम ये कह सकते हैं कि एलिहू सही था?
इस पर डॉक्टर वॉल्टन का विश्लेषण बहुत ही संतुलित है। वे स्पष्ट करते हैं कि एलिहू को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। वो इस कहानी के अन्य सभी इंसानी वक्ताओं से ज्यादा सही है।
उन तीन दोस्तों से तो बेहतर ही है।
बिल्कुल। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, वो पूरी तरह से सही नहीं है। उसके तर्कों में कुछ चीजें बिल्कुल सटीक हैं जो ईश्वरीय यथार्थ को छूती हैं, लेकिन कुछ चीजों में वो इतनी भयंकर रूप से गलत है कि वो पूरी तरह भटक जाता है।
ये तो बहुत ही पेचीदा स्थिति हो गई। चलिए इसे दो हिस्सों में बांटते हैं। पहले उस हिस्से पर रोशनी डालते हैं जहां एलिहू का तर्क एकदम सटीक निशाने पर लगा। वो कहां सही था?
एलिहू इस बात में पूरी तरह सही है जब वो जॉब की इस रवैये के लिए कड़ी आलोचना करता है कि जॉब खुद को सही साबित करने की जल्दबाजी में ईश्वर की निंदा कर रहा है या उसे अन्याय ठहरा रहा है।
मतलब वो ईश्वर के बचाव में सही खड़ा है।
हाँ, एलिहू बहुत ही शक्तिशाली शब्दों में स्थापित करता है कि ईश्वर किसी भी इंसान के प्रति जवाबदेह नहीं है। इंसान ईश्वर से सवाल नहीं कर सकता या उसके ब्रह्मांडीय न्याय को इंसानी अदालत के किसी छोटे से तराजू पर नहीं तोल सकता,
क्योंकि ईश्वर के कार्य हमारी सीमित इंसानी समझ के अधीन नहीं है।
एग्जैक्टली। एलिहू का यह दृष्टिकोण ईश्वर की असीमित महानता को बहुत सही ढंग से प्रस्तुत करता है। इस बात में वो पुराने दोस्तों की तुलना में ईश्वर के स्वभाव के बहुत करीब है।
ये बात तर्कसंगत लगती है। अगर कोई सत्ता सच में पूरे ब्रह्मांड को बनाने और चलाने वाली है तो वो इंसानी अदालतों की मोहताज नहीं हो सकती। लेकिन अगर वो यहाँ इतना सही था तो फिर वो कहाँ मात खा जाता है?
उसकी सबसे बड़ी वैचारिक भूल ये है कि वो जॉब के असली इरादों और उसके हृदय परिवर्तन को समझने में पूरी तरह से विफल रहता है।
कैसे?
एलिहू को लगता है कि जॉब अभी भी उसी पुरानी मानसिकता में फंसा हुआ है जिसे डॉक्टर वॉल्टन ग्रेट सिम्बियोसिस या महान सहजीविता कहते हैं।
ग्रेट सिम्बायोसिस यानी वो सोच जहाँ इंसान यह मानकर चलता है कि मैं अच्छे कर्म करूंगा और इसके बदले में ईश्वर एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत मुझे सुख समृद्धि देगा।
हाँ, एक प्रकार का आध्यात्मिक व्यापार।
तो एलिहू को लगता है कि जॉब सिर्फ इसलिए चीख पुकार मचा रहा है क्योंकि उसका ये लेन देन वाला सौदा टूट गया है।
ठीक यही बात एलिहू सोचता है कि जॉब अब भी केवल फायदे जाता है, लेकिन असल में कहानी में अब तक जो घटनाक्रम हुआ है उसमें जॉब ये पूरी तरह से साबित कर चुका है कि वो किसी भी कीमत पर केवल समृद्धि नहीं चाहता।
उसने अपना सब कुछ खो दिया है, वो राख में बैठा है, फिर भी वो केवल एक चीज चाहता है, ईश्वर से सीधा संवाद।
बिल्कुल, वो उस आध्यात्मिक व्यापार से बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन एलिहू जॉब के व्यक्तित्व की इस गहराई को देख ही नहीं पाता। वो जॉब को एक बहुत ही साधारण खांचे में फिट करने की कोशिश करता है।
एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ इस पूरे दार्शनिक ढांचे में एक बहुत बड़ी दरार नजर आ रही है।
अच्छा, क्या?
अगर मैं इसे सही से समझ रही हूँ तो यहाँ एक भयंकर विडंबना है। मतलब ध्यान से देखिए, एलिहू जॉब पर लगातार ये आरोप लगा रहा है कि जॉब अपनी सीमित समझ से ईश्वर को तौलने की कोशिश कर रहा है।
हाँ, वो यही कह रहा है।
लेकिन क्या एलिहू खुद उसी जाल में नहीं फंस गया है? वो ईश्वर के इतने विशाल असीमित न्याय को निवारक न्याय के एक नए लेकिन फिर भी इंसानी तर्क के एक साधारण से समीकरण में समेटने की कोशिश कर रहा है।
अरे वाह, ये एक बहुत ही शानदार और गहरी पकड़।
मतलब वो खुद को इतना बुद्धिमान समझ रहा है कि वो ईश्वर के काम करने के तरीके को पूरी तरह से डिकोड कर ले।
एकदम, डॉक्टर वॉल्टन का विश्लेषण भी ठीक इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि एलिहू अपनी खुद की तार्किक क्षमता को जरूरत से ज्यादा आंक रहा है। वो भले ही पुराने दोस्तों के सुधारात्मक न्याय से आगे निकल गया हो, लेकिन वो अभी भी ईश्वरीय न्याय को एक गणित के फॉर्मूले की तरह हल करने की कोशिश कर रहा है।
उसने पिंजरा थोड़ा बड़ा और नया जरूर कर दिया है,
लेकिन वो अभी भी ईश्वर को एक तार्किक पिंजरे में ही कैद करने की कोशिश कर रहा है। वो मानता है कि उसकी इस नई बौद्धिक समझ से ब्रह्मांड के सारे रहस्य सुलझ जाएंगे, और ये ही उसका अपना आत्माभिमान है।
और यही उसकी सबसे बड़ी विफलता है। वो जॉब के अहंकार पर उंगली उठा रहा है, लेकिन अपने स्वयं के वैचारिक अहंकार को नहीं देख पा रहा है।
सही कहा।
कोई भी साधारण तार्किक समीकरण ईश्वरीय नीतियों की विशालता को पूरी तरह नहीं समझा सकता, और शायद यही कारण है कि एलिहू के इन 6 अध्यायों के लंबे भाषण के बाद भी कोई समाधान नहीं निकलता।
बिल्कुल नहीं निकलता।
अंततः ईश्वर को खुद एक बवंडर के रूप में सामने आना पड़ता है। एलिहू की बातें भले ही कितनी भी तार्किक क्यों ना लगे, वे अधूरी हैं।
ये इस पूरे प्रसंग का सबसे सटीक सार है। एलिहू का किरदार भले ही कहानी के बीच में एक अचानक आई रुकावट लगे, लेकिन वो इंसानी तर्क और हमारी बौद्धिक सीमाओं को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है।
हमारी समझ की एक सीमा है।
वो ये साबित करता है कि जब बात जीवन के सबसे गहरे दुखों और ब्रह्मांड के रहस्यों के आती है, वो तो हमारे सारे परिष्कृत दार्शनिक तर्क एक बिंदु पर आकर अपनी सीमा पर पहुंच जाते हैं।
अंततः हमें ये स्वीकार करना पड़ता है कि कुछ चीजें हमारी पकड़ से बाहर हैं,
और उनके लिए तर्क नहीं बल्कि ईश्वरीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।
तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि एलिहू केवल एक बेवजह बोलने वाला किरदार नहीं था, वो इंसानी सोच और ईश्वरीय यथार्थ के बीच एक बहुत ही जरूरी वैचारिक पुल था।
बिल्कुल, वो उस अंतिम सीमा तक हमें ले जाता है जहां इंसानी तर्क थककर हार मान लेता है।
इस पूरी गहन विवेचना से एक ऐसा विचार जन्म लेता है जिस पर शायद बहुत कम ध्यान दिया जाता है। सोचिए, अगर एलिहू का तर्क इतना ही अधूरा था और अगर ईश्वर ने अंत में आकर एलिहू को संबोधित तक नहीं किया,
तो उसे कहानी में रखा ही क्यों गया?
हाँ, इस प्राचीन ग्रंथ के संकलनकर्ताओं ने क्या सोचकर उसके इन 6 अध्यायों के भाषण को सहेज कर रखा? वे आसानी से इसे एडिट करके निकाल सकते थे।
निकाल सकते थे, बिल्कुल।
लेकिन शायद उन्होंने इसे इसलिए नहीं हटाया क्योंकि ये ग्रंथ हमें ये सिखाना चाहता है कि सत्य तक पहुंचने का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता।
ये एक बहुत गहरी बात है।
शायद ये इस बात का प्रमाण है कि ईश्वरीय रहस्यों को समझने की हमारी ये असफल लेकिन ईमानदार तार्किक छटपटाहट भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
और इससे सुनने वालों के मन में शायद ये सवाल आए कि क्या आज भी जब हम किसी बड़ी त्रासदी का सामना करते हैं
तो क्या हम भी एलिहू की तरह ही नहीं बन जाते?
बिल्कुल।
क्या हमारे सारे दार्शनिक और वैज्ञानिक सिद्धांत उसी एलिहू के भाषण की तरह नहीं है? बहुत ही परिष्कृत, बहुत ही तर्कसंगत, लेकिन ब्रह्मांड की उस अनंत सच्चाई के सामने बिल्कुल बौने?
ये तो सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है।
ये एक ऐसा विचार है जो इस प्राचीन पाठ से निकलकर आज के हमारे आधुनिक वैचारिक ढांचे पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है, और शायद यही इस रचना की सबसे बड़ी जीत है।